नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटलीकरण के मामले में विशेषकर भुगतान को लेकर आज भारत ने एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश को कोविड-19 और इसके आर्थिक दुष्प्रभावों के खिलाफ लड़ाई में तो मदद मिली ही, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ा है। भारत की वृद्धि की कहानी अभी और आगे चलने वाली है। जॉन हॉपकिंग्स स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में छात्रों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, एक समय था जब भारत वैश्विक मानकों, वैश्विक आदर्शों को देखता था और हम कहते थे कि हमें उस स्तर पर पहुंचना है, कैसे करना है ये भी सीखना है। आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत कुछ सीखना है और मानकों के अनुरूप काम करना है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन डिजिटल पक्ष की ओर देखें तो चाहे ये भुगतान हो, पहचान हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुपालन, आवश्यकताओं के तौर तरीके हों, इनमें वास्तव में भारत ने मानक स्थापित किए हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट की अपने फैशन D2C स्टार्टअप एड ए ममा के कारोबार का अगले वर्ष UAE और यूरोप तक विस्तार करने की योजना है। आलिया ने PTI भाषा को बताया कि एड ए ममा उनका पहला उद्यम है जो बच्चों के परिधानों को किफायती दामों पर उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा, मैं भारत से बाहर विस्तार करने पर ध्यान देना चाहती हूं तथा इस ब्रांड में और श्रेणियां जोड़ना चाहती हूं। हमने बच्चों के कपड़ों के ब्रांड से शुरुआत की है और इस साल मैटरनिटी परिधान की पेशकश करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 वर्ष में उनकी योजना परिवारों से संबंधित श्रेणियों में और पेशकश करने की है। एड ए ममा अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। फर्स्ट क्राई, आजियो और मिंत्रा जैसे ऑनलाइन मंचों पर इस ब्रांड के उत्पादों की बिक्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की योजनाओं के बारे में आलिया ने कहा, UAE हमारी सूची में पहले स्थान पर है। ये अगले वर्ष तक शुरू हो जाएगा तो यूरोप में भी विस्तार करेंगे और इसके बाद दुनिया भर में पहुंच बनाएंगे। अगले वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता करने जा रहे भारत ने बृहस्पतिवार को समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को अध्यक्षता के दौरान अपने एजेंडे के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक से इतर इंडोनेशिया की वित्त मंत्री श्री मुलायानी इंद्रावती ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 2023 में G20 का अध्यक्ष भारत होगा, वित्तीय जिम्मेदारी भी उसके पास होगी। समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत के प्रमुख प्राथमिकता वाले जो प्रस्तावित एजेंडा है उनके बारे में मंत्रियों और गवर्नरों को जानकारी दी गई। G20 की अध्यक्षता अभी इंडोनेशिया के पास है। बृहस्पतिवार को इंद्रावती ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए थे। भारत ने स्वदेशी स्तर पर विकसित 5G शुरू कर दी है और अब इसे अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ये कहा। उन्होंने कहा, भारत की 5G प्रौद्योगिकी की कहानी अभी लोगों तक पहुंची नहीं है। हमने देश में जो 5G सेवा शुरू की है वह पूरी तरह से अपने दम पर है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है और जिसे चाहिए उसे हम 5G दे सकते हैं। सीतारमण ने कहा, 5G कहीं और से नहीं लाई गई बल्कि पूरी तरह से हमारा उत्पाद है। उन्होंने कहा कि इसे अभी भारत के चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया है और ये 2024 तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, 5G की बात करें तो हम भारत की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बादेनोच ने कहा है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जो बातचीत हो रही है वह अब दीपावली के समय सीमा को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में FTA वार्ता की प्रभारी कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत के साथ जिस समझौते पर बातचीत चल रही है वह उद्योग जगत के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि इसमें 150% तक शुल्क खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम काफी करीब हैं, समझौते पर अभी भी काम चल रहा है। इसमें एक परिवर्तन है और वह यह है कि अब हम दीपावली की समय सीमा को ध्यान में नहीं रख रहे। हम समझौते के गति के बजाय इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गया। वहीं खुदरा अनाज की कीमत सितंबर महीने में 105 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर को सार्वजनिक गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक कुल 511.4 लाख टन था, जबकि पिछले साल ये 816 लाख टन था। 2017 के बाद से अब तक गेहूं और चावल का स्टॉक सबसे निचले स्तर पर है। 1 अक्टूबर को गेहूं का स्टॉक न केवल 6 साल के निचले स्तर पर था बल्कि बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक था। हालांकि चावल का स्टॉक आवश्यक स्तर से लगभग 2.8 गुना अधिक था। 4 साल पहले की तुलना में FCI के गोदामों में कम अनाज उपलब्ध है। वहीं मुद्रास्फीति के लगातार 9वें महीने संतोषजनक स्तर से ऊपर रहने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक को अब केंद्र सरकार रिपोर्ट देगा और विस्तार से इसका कारण बताएगा। निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक का सितंबर 2022 में खत्म तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध मुनाफा 52.89% बढ़कर 703.71 करोड़ रुपए रहा। लाभ में वृद्धि की वजह फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में कमी से हुई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।